इसीलिए अगली आयत बिल्कुल डायरेक्ट छोटी सी आयत है, अगर आप देखें तो आधी लाइन है, आयत 244, वकातिलु फी सबीलिल्लाह, डायरेक्टली बोला यस अल्लाह की राह में जिहाद करो। ये नहीं कहा जाहिदु फी सबीलिल्लाह, नहीं कहा अल्लाह ने क्या लड़ाई करो, जंग करो। यहां बिल्कुल किताल कमानी है, हमें किसी किस्म की शर्म नहीं आनी चाहिए ये सोचते हुए कैसे होगा, वैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। लड़ो अल्लाह के रस्ते में, वालमू, और खूब इल्म हासिल करो, खूब जान लो किस बात को कि अल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह ताला सब कुछ सुनने और जानने वाला है। क्या पता चला, अल्लाह सुबहान ताला ने अपने रास्ते में जिहाद करने की खुल्लम खुल्ला बात कर दी। अल्लाह सुबहान ताला नहीं कहते ऐसा नहीं वैसा नहीं, कहा देखो वो जिहाद से भागे मौत के डर से, तो मौत से तो फिर भी ना बच सके। अल्लाह ने इंसान की मौत और उसका रिस्क मुकर्रर कर दिया है, ना वक्त से पहले आता है ना वक्त से बाद मिलता है, ना घटता है ना बढ़ता है। अब तुम अगर अल्लाह के रास्ते में निकलने से पीछे हो गए तो याद रखो कि मौत को पीछे नहीं कर सकते। यहां हजरत खालिद बिन वलीद का वो मारूफ जुमला तफसीर में आपको मिलेगा कि बिस्तरे मर्ग पे लेटे हैं और कहते थे किधर है मौत से डर कर जान छुड़ाने वाले, लड़ाई से जी चुराने वाले नामर्द किधर हैं, आए और मुझको देखें। सारे जिस्म में कोई ऐसी जगह नहीं जहां तीर और तलवार या बरछा न लगा हो, लेकिन देखो मैं आज अपने बिस्तर पे मर रहा हूं। आज भी आप देखिए कि रोड एक्सीडेंट्स में ज्यादा लोग मर जाते हैं जंगों की निस्बत, लेकिन लोग गाड़ियों में बैठना नहीं छोड़ते, जहाजों में बैठना नहीं छोड़ते। क्यों? इसलिए कि मुसलमान का ईमान है कि तुम्हें मौत जहां आनी है आके रहनी है, वलो कुन तुम फी बुरूज मुशय्यदा, चाहे तुम बड़े से बड़े बुर्ज में बंद हो जाओ, सूरत निसा में हम पढ़ेंगे। तो लिहाजा लड़ाई से जंग से जान नहीं छुड़ानी, बहुत बड़ी इबरत है। लिख ले, इस्लाम की चोटी यानी द चोटी, पीक ऑफ इस्लाम इज ज़िरवतुल इस्लाम इज जिहाद। आज तरक्की के नाम पे, पीस के नाम पे, अमन के नाम पे, कर्टसी के नाम पे लोगों ने जिहाद को एक कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म बना दिया। हालांकि अगर आप देखें कि ये वो चीज है कि जिसकी वजह से दुश्मन आपसे पीछे रहता है। आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, यहाँ तो एक साइड की इशू आ रहा है ना, सूरत अल अनफाल और तौबा में तो बहुत डिटेल से हम ये सब कुछ पढ़ेंगे। सूरत अल इमरान में भी गज़वे उहद का जिक्र डिटेल से आएगा, लेकिन याद रखिए कि इस्लाम में हथियारों की नुमाइश पसंदीदा है उसके इस्तेमाल की निस्बत। समझ आई? हथियार चलाओ नहीं, दिखाओ। एटम बम बनाओ, दुश्मन को बताओ हमारे पास पड़ा हुआ है, हमारे पास तीर तलवारें हैं, अपनी फौज की परेड करवाओ, अपने असले की नुमाइश करो, दैट्स इट, चलानी ना पड़े। जैसे घर में बच्चे को डराने के लिए कोई डंडा रखा हो, उठाना तो नहीं पड़ता ना, बच्चे को पता होता है कि ये चीज आ जाएगी। यहां यही बात बताकर अल्लाह सुबहाना ताला ने सब कुछ हमारे सामने रख दिया कि देखो करो क्या, वकातिलु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में लड़ाई कर लो। चलिए ठीक है, इन्नल्लाह समीउन अलीम क्यों यहां आया भाई? अल्लाह सुनता भी और जानता भी है, और अल्लाह की जात बंदे के अंदर तक झांक लेती है। यहां बताया गया कि कब कौन क्या कर रहा है अल्लाह को पता है। आपको तो कि अल्लाह कीमतों को भी सुनता है, अल्लाह दुआओं को भी सुनता है, अल्लाह तंस को भी सुनता है, अल्लाह तानों को भी सुनता है। जिस बंदे और बंदी को अल्लाह के असमी होने का यकीन होगा ना, वो कभी पीछे नहीं हटेगा, वो कभी छुपके से नहीं कहेगा किसी और को ना बताना। उसको पता है, उसने सुन लिया जो सारी दुनिया को बता सकता है बगैर किसी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल किए हुए। तो लिहाजा शऊर के साथ बोले, सुनता है, समीया से यस्माऊ असमी, कान की उस कुव्वत का नाम है समा जिससे इंसान आवाजों को महसूस करता है। अल्लाह ताला ने अपने लिए ये नाम चूज किया, और समी फाइल का वजन है, मुस्तकिल सुनता है। हम थोड़ी देर सुन ले, हम कहते बस करो, सर में दर्द शुरू हो गई। अल्लाह कहते है सब बोलो, कद समय अल्लाह कौल अल्लती तुजा दिलो का फीसा हो जी हा, अल्लाह ने तो सातवें आसमान पे अर्श पे उस औरत की आवाज सुन ली थी जो हजरत आयशा के पास बैठी है शिकवा कर रही थी अपने शोहर का। आयशा कहती मैं उसकी बात नहीं सुन सकी, हालांकि वो मेरे बड़े करीब ही बैठी थी, अल्लाह ने कैसे सुन ली? क्योंकि वो असमी है और अलीम है, जानता है दिलों को। तो मत वो काम करें जिसके जाहिर होने से डरे, याद रखिएगा। अल्लाह के अलीम होने का भी तो एक तकाजा है ना, کہ وہ میری بات دوسروں کے سامنے نشر کر سکتا ہے کیوں کہ اس کو خبر ہے. واللہ ہی نہ ہم اپنی آنکھ کا نہ اپنے کان کا نہ اپنی زبان کا غلط استعمال کریں اگر ہمیں اللہ کے السمیع اور العلیم ہونے کا یقین آ جائے. سر اٹھتا ہے بندے کا اللہ کے آگے سے, جس کی برائی کی ہو اس کے تو سامنے بندہ نہیں جا کے کھڑا ہو سکتا, جس کو برا کہا اس کے سامنے نہیں آتا, اور جس ذات کو سب کا پتا ہو تو شعور چاہیے. قرآن پڑھنے والوں میں اگر اس خوبی کا احساس نہیں ہے تو بتائیے کن کے اندر ہوگا. لہذا اب اگلی آیت میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے من ذا الذی, کوئی ہے ایسا, انداز اتنا خوبصورت آیت کا کہ بس قربان جائے انسان. کوئی ہے جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کوئی مائی کا لال ہے, ہے کسی میں اتنی جرت, کسی میں ہے اتنی طاقت, کون؟ یقرض اللہ قرضا حسنا, جو قرض دے اللہ کو قرض حسن, بہت اچھا قرض دے, کیا ہوگا؟ یضاعفہ لہ, وہ دگنا کر دے گا, ملٹی پلائی کر دے گا اس کو اس کے لیے. دیکھیے یضاعفہ, ہو کیا ہے؟ قرض حسن. لہو کیا ہے؟ ہو وہ دینے والا. یہ ضمائر صحیح کر کے لکھے, ترجمہ نہیں بھولے گا. کتنا؟ اضافن کثیرا, دگنے کا بھی دگنا, یعنی صرف ون ٹائم ملٹی پلائی نہیں کرے گا بلکہ ہمیشہ ملٹی پلائی بائی ملٹی پلائی کرے گا. وہ کون سا ہے؟ قرض حسن کیا ہے؟ جو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے دیا جائے. دیکھیے خرچ کی مختلف قسمیں, یہ آیت پوری کر لیں پھر میں اس کے الفاظ میں لے چلتی ہوں آپ کو, تو آپ خود بھی سمجھ جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دگنے کا دگنا کروں گا, واللہ یقبض ویبسط, اللہ تنگ دستی بھی دیتا ہے اور کشادگی بھی دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور مال کی محبت میں کیوں چورو, ادھر ہی بھیج دو مال کو جدھر تم نے جانا ہے. إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, تمہیں اس کی طرف لوٹنا ہے تو مال بھی ادھر لوٹا دو. کسی نے ایک بزرگ سے کہا کہ مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے, کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میرے دل سے موت کا خوف نکل جائے. تو کیا کہا؟ کہنے لگے اپنی من پسند چیزیں اللہ کے راستے میں دینی شروع کر دو, آگے بھیج دو. کیوں؟ کہ جہاں بندے کی پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں اس کا دل وہیں لگتا ہے. یہ جو ہم بھاگے بھاگے شام کو اپنے گھروں میں جاتے ہیں, بولا کیوں جاتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم کسی اور جگہ چلے جاتے؟ کیونکہ گھر میں ہمارا سامان ہوتا ہے. ایک کمرے کا گھر ہو لیکن آپ کو تو آپ نے جا کے اپنا نائٹ سوٹ پہن کے ریلیکس ہو جانا ہے, آپ کو ادھر زیادہ سکون ملے گا اپنی کسی دوست کے گھر جانے سے. تو جہاں سامان ہے دل وہیں لگتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت یہاں کیوں آئی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کے مرحلے آئیں گے ساتھ ہی مال کی ضرورت ہوگی. دنیا میں کوئی کام بغیر مال کے ہوتا؟ فلم بنتی ہے بغیر مال کے؟ کوئی بلڈنگ بنتی ہے؟ کوئی کانسرٹ ڈیزائن ہوتا ہے مال کے بغیر؟ تو اللہ کا دین کیسے غالب ہوگا مال کے بغیر؟ اللہ کے دین کا غلبہ, اللہ کے اسلام کا غلبہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو بالکل ڈائریکٹ حکم دیا. آپ کو تو امر کے سیگے ہیں قاتلو, اور قاتلو ڈائریکٹ ہے لیکن مال خرچ کرنے کے لیے صرف بتا دیا منزل لذی ہے, کوئی فرق سمجھیے گا. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے انفقو فی سبیل اللہ, خرچ کرو, آگے آئے گا تیسرے پارے میں بہت آئے گا, لیکن یہاں سمجھیے ابھی سوچ دی گئی. کیسا قرض؟ جو قرض حسن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہاں خیال دیا, اور یہ ہے وہ آیت جس پہ دو مختلف رویے سامنے آئے تھے. ایک تھا ابو دحدہ الانصاری کا, جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی کے پاس آئے, کیا اللہ مجھ سے قرض مانگتا ہے؟ حیرت ہو رہی تھی ان کو. یہ تو ایسے جیسے آپ کہیں گے صدر اوباما آپ سے قرض مانگتے ہیں, تو آپ کہیں گے اچھا صدر اوباما مجھ سے مانگتے ہیں, حیرت ہوئی. تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں اس لیے کہ تمہیں بڑھا کر اور دیں. ابو طلحہ کے بارے میں آتا ہے, میں نے ابو دحدہ کا مختلف واقعات ہیں, اور یہ آیت ایک سے زیادہ جگہ آتی ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بڑھا کے تمہیں زیادہ دیں. کہا اچھا اللہ کے نبی اپنا ہاتھ تو دیجیے, یہ پکڑیے میں اپنا باغ اللہ کے رستے میں دیتا ہوں. ایک تو اس طرح کے کردار تھے نا, گھر دے دیا, باغ دے دیا, بیوی کو کہا چل نکل ہم یہاں سے جا رہے ہیں. اور ایک کردار تھا فنحاس کا, آپ پڑھیں گے انشاءاللہ, میرا خیال ہے سورت مائدہ میں آئے گا یا نساء میں, ابھی اس وقت بھول گئے لیکن آیت یاد آ رہی ہے کہ اس آیت پہ اس نے کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ इन्ना अल्लाह फकीरुन व नहनु अग्निया। कहो देखो देखो, मुसलमानों का खुदा फकीर हो गया तभी हमसे मांगता है। बाद में मुकर गए। आपने कहा तुमने ये कहा है? कहा नहीं नहीं मैंने तो नहीं कहा। तो आयतें उतर गई, इन्ना अल्लाह फकीरुन। तो याद रखिए ये बात, मैं जो कहने लगी ना, मैं अपने दिल से निकालना चाहती हूँ ये बात, ताकि आपके दिल पे जाए। आपकी मेरी अल्लाह के दीन से सच्चाई, इस्लाम की कौज से सच्चाई, इस्लाम के लिए खर्च करने से पता चलती है। आपकी जात पे कितना लगता है और अल्लाह की जात, जात पे तो नहीं लगता, अल्लाह के तो रास्ते में लगता है। और अल्लाह उसको कर्ज कहता है। कर्ज और इन्फाक में क्या फर्क है? इन्फाक आपने दे दिया, कर्ज क्या पलट के वापस मिलेगा। हम नहीं कहते मैं मिले, अल्लाह कहता ये मेरे ऊपर कर्ज है, मैं लूंगा, मैं वापस करूंगा, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। सच बताएं, क्या हमारे माल का हकदार बैंक का लॉकर या बैंक का अकाउंट है या अल्लाह का रास्ता? बेकार माल हमारा पड़ा रहता है जिसमें चोरी का खतरा, डर खतरा, क्या पड़े हुए, अल्लाह के रास्ते में दिया तो पड़ा पड़ा ही वो मल्टीप्लाई हो जाता है। कल मुझे किसी जगह से एक सिस्टर का मैसेज आया, आजकल में ही बात हुई, बात नहीं मैसेज था, तो उन्होंने कहा कि किसी मुल्क में आजकल के ही दौर में एक मुल्क की करेंसी के दो नोट शायद 1000 और 500 के ओवरनाइट गवर्नमेंट ने ऐलान करके खत्म कर दिए। तो पूरे मुल्क में क्या हौसला है, पूरे शहर में क्या हौसला है, सारे तो नहीं नोट लेके छुपा के बैठे, और लोग जब चेंज करने जा रहे हैं तो वो चेंज नहीं हो रहे, और प्लस ये है कि जो जॉब वाले इंप्लॉयज हैं उनको पे दे रहे हैं, पे नहीं वो ले रहे, कि हम क्या करेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इस पे कोई बात करें, उन सारे साथियों की तसल्ली की। और वो क्या कह रही थी कि इस वक्त वो भी वहीं रहती हैं। शुक्रिया का उन्होंने मैसेज किया कि आपने हमें कुरान पढ़ाया, हम पहले से इस चीज पे मुतमईन थे कि जमा जोड़ नहीं कर रहे, हमें इस वक्त कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अगर हम कुरान से ना जुड़े होते तुम्हारे घरों में भी शायद इन नोटों की कितनी दथियां होती और आज हम भी दूसरों की तरह परेशान होते। चंद साल पहले आपको था, आपके इस नॉर्वे में हुआ था कि लॉकर्स जो लोगों के पैसे, उसमें कीड़े आ गए थे, तो मिलियंस क्रोन जो थे वो कीड़े खा गए थे। उसकी प्रेजेंटेशन बनी पड़ी है कहीं, हमने जब लिगत का प्रोजेक्ट किया था उसमें वो यूज की थी, पता ही नहीं चला कीड़ा पड़ गया, वो नोट जाया हो गए, वो बुरादा बन गया। तो ये तो एक दफा हुआ है, ये तो सबके साथ होना है। अल्लाह ताला कहते हैं आज अपने हाथ से इसको कीमती कर लो। लेकिन मैं कहती हूँ अपने हाथ से मुर्दों को नहलाते धुलाते, उनकी चूड़ियाँ उतारते, सब कुछ उनका था, वो कुछ ना साथ लेकर जाते, देखते हैं नहीं यकीन आता, तो इसका नहीं आता कि मैंने भी चले जाना है। सबसे बड़ी बेयकीनी इंसान को यह है कि मैंने नहीं मरना, मेरा माल, तौबा करो। मैं अक्सर सोचती हूँ गुनाह बेलज़त, आप खुद संभाल रहे हैं, पचा रहे हैं, और होका क्या है ना कि कभी काम आ जाएगा, और इस्तेमाल भी कोई नहीं करते। कई लोग जाके एक प्लॉट और ले आएंगे, इस साल फिर जाएंगे तो प्लॉट मकान बना लेंगे, जरा कुछ ये कर, आपके क्या साथ गया। मंजिल लज़ी युक्रिदुल्लाहु कर्दन हसना, कर्ज़े हसन। इसी तरह दो तीन दिन पहले मुझे एक और किसी मुल्क से हमें एक मैसेज आया, पहले भी आया हुआ था लेकिन उन्होंने उसका स्लिप भेजी। दौरे कुरान में उन्होंने सुना होगा इधर नॉर्वे के प्रोजेक्ट का जो होता है, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं ना, हमें तो पता ही कोई नहीं क्या हो रहा है, लेकिन बाहर वालों को तब भी था। तो उस वक्त किसी सिस्टर ने जब ये बात सुनी कि कर्ज देने में क्या फायदे होते हैं, तो उन्होंने कुछ करेंसी अपने मुल्क की आपके स्कूल के नाम पे कर्ज हसना पे भेजी कि हम अपने फलां जो उनके फौते वालिद उनकी तरफ से ये पैसे स्कूल को देते हैं, लेने हमने कोई नहीं वापस, बट हम दे कर्ज हसन की सूरत में रहे। समझ आई बात आपको? ताकि फयुदाय फहू लहू अदाफन कसीरा। आप सोचे ना ये यकीन कितना बड़ा है। आपके इस पर्स में 1000 करोन पड़ा हुआ है, 1000 तो कुछ भी नहीं होता इधर, कितने अच्छे होते हैं। आपके पर्स में कितने पैसे होते, आप कॉन्शियस होती हैं? अब तो कार्ड ही होता बेचारा किसी ना काम का नकम्मा। 10,000 करोन हो आपके पर्स में, आपको पर्स की फिक्र होगी ना, इधर ना रखो उधर ना रखो, और हो ही इसमें 100 करोन तो चलो ले भी गया गया तो हमें बुरा ही कहेगा ना कि रखा क्या था पर्स में, ठीक है ना। अब आपके पर्स में तो आप इस पर्स की हिफाजत कर रहे हैं, और ये 10,000 निकल के चले गए दूसरे पर्स में जो फी सबीलिल्लाह था, तो आपको हिफाजत करनी पड़ेगी कि उनको करनी पड़ेगी? उनको करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आती इंसान का दिल क्यों घुटता है। और आप याद रखें कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दो चीजों में बूढ़े का भी दिल जवान रहता है, एक लंबी उम्र और एक माल की हवस। कब्र में आधी टांगे जा चुकी हैं, हम मौत के तो ज्यादा ही करीब होंगे ना जिंदगी से, बट बंदा सोचता है कि नहीं अभी कुछ और, अभी कुछ और जिनके लिए छोड़ना है उन्होंने बाद में लड़ना है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने यहां बता दिया सहाबा कराम को, और ये है बेहतरीन तरीका कुरान का तज़किए का, वक्त आने से पहले सहाबा से कहा दूसरों में नजरें ना रखना, तुम बताओ तुम क्या कर सकते हो, तुम अपनी जान दोगे, माल दोगे, वक्त दोगे, और इसमें हर चीज आती है जो अल्लाह के रास्ते में आएगी, क्योंकि बंदे को हर काम करना। आपके घर मेहमान आएंगे तो क्या आप सिर्फ खाना पकाएंगे, बैठने की भी जगह चाहिए, बर्तन भी चाहिए, घर साफ भी चाहिए, 10 चीजें होती हैं जब 4-6 लोग आते हैं, तो अल्लाह के दीन में हर काम की जरूरत होती है, और कुछ नहीं तो बंदा अपनी लाइबिलिटीज तो पूरी कर सकता है ना। आप देखिए मैं सोचती हूँ कि नेकी का काम करके लोग हमें नेकी का मौका दे रहे होते हैं, आप सोचें ना कि हम ज़कात देना चाहते हैं, है ही नहीं कोई दुनिया में, किस पे लगाएं, कोई फीस भी लीला काम ही नहीं हो रहा, कुछ नहीं, हाय मेरी ज़कात का क्या बनेगा। और यकीन करें एक वक्त आएगा ऐसा, लोग माल लेकर फिरेंगे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का गालिबन दौर था, मैंने एक वाक्य पढ़ के सुनाया भी था कहीं आज की बात में, तो उनके उमाल, उमाल कहते हैं ज़कात वसूल करने वाले करिंदे, वर्कर्स जो होते हैं, तो वो आए और कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन इतना माल जमा हो गया पर आगे दें किसको, मुसलमानों पे इतना अरूज था और ये आज भी आ सकता है, आज हम अपनी पॉलिसीज चेंज करें ये आज भी आ जाएगा। कहा लेने वाले कोई नहीं सब दे रहे हैं, कहा आप क्या करें, कहा जाओ उधर दो उधर दो सब जगह, कहा कुछ नहीं फिर बच गया, फिर बच गया, कहा जाओ जेल के कैदियों को दे दो, कहा उनके पास भी फिर भी दे के बच गया, कहा जाओ के मुजाहिदीन पे लगाओ कहते उधर भी नहीं बच गया, कहा अच्छा फिर इस पैसे का अनाज लो और जाके पहाड़ों पे डाल दो परिंदे खा जाएंगे। ये मुसलमानों की तारीख थी, आज हम कहते किस्त ही नहीं दी जाती, ये कर्जों के बोझ ने कर्ज हसना से पीछे कर दिया हमें। वल्लाही खरीदना है तो 2 गज जमीन को खरीद लो जो आपकी तो है, सारी जिंदगी बंदा अपने आप को मुश्किल में डालता है। और जो आज का दौर चल पड़ा, शादी हो ना हो घर ले लो, लड़का मिले ना मिले घर मिल जाए, लड़की मिले ना मिले अभी घर ले लो, क्योंकि इसमें रहना है बाद में, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं है। और मुझे हैरत होती है कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने यहाँ ये बात करके बता दिया किसी कौम पे अल्लाह का फजल क्या है कि उसको अल्लाह के रास्ते में अपने आप को खपाने की कैफियत हो जाए और अल्लाह के रास्ते में हो। और ये जलस फी सबीलिल्लाह ये बड़ा खूबसूरत है, मुझे याद है मैंने सबीलुल जन्नत में भी इसको बहुत एलेबोरेट किया था। सुबल किसको कहते हैं, रस्सी को, तो रस्सी दो चीजों के बीच में होती है ना, इसी से आप देखिए कि फी सबीलिल्लाह क्या है, आप सोचे कि एक रस्सी का एक सिरा आपके हाथ में तो दूसरा सिरा किसके हाथ में, अल्लाह के हाथ में। फी सबीलिल्लाह हर वो चीज होती है जो आपको अल्लाह का कुर्ब दे दे, अल्लाह के करीब कर दे, ये वो चीज है जो एक इंसान अपने अंदर ले आए तो फिर इससे बाद और क्या। ये लफ्ज कर्ज यहां आपके लिए आया, थोड़ा सा इसको भी समझ लें, काफ राज जोए कर्ज, कर्ज का लफ्जी माना होता है काटना, काटना टू कट। तो कर्ज को कर्ज क्यों कहते हैं कि जब कोई किसी को देता है तो अपने में से काट लेता है ना, ठीक है उसका नहीं रहता, वो दूसरे को चला जाता है। फिर इसी तरह से किसी जगह से कतराने को भी कहते हैं, कतराना यानी जैसे आप अवॉइड करते हैं, कर्ज कोई चीज जो दी जाए या वो काम जो किया जाए इस उम्मीद पर कि वो वापस मिल जाएगी या इस काम का बदला मिलेगा, वापसी की बात है। अब कर्ज हसना अरबों में कैसे इस्तेमाल होता था, किसी के साथ अच्छा सलूक करना और मामला करना, ये मुहावरा भी है, यानी ये अरबों का एक मुहावरा था अपने दौर में, मतलब के अल्लाह के निजाम को कायम करने के लिए जिद्दोजहद शुरू की जाए तो जिस माल की जरूरत होती है उसको कर्ज हसना कहते हैं, कमियों को पूरा करना जानी माली हर तरह से। और याद रखिए कर्ज हसना में दिल की खुशी शामिल है, ये वो फंड रेजिंग कर करके जबरदस्ती लिया हुआ माल नहीं होता। हसन क्या है, ब्यूटीफुल, आसन खूबसूरत। कर्ज ये नहीं कि चलो चलो आ जाते हैं मांगने ले लो जाओ अब ना आना, ये मुराद नहीं है। कर्ज हसन, हसन लफ्ज पे जाएंगे तो फिर इंजॉय करेंगे खुशी से, जैसे किसी को गिफ्ट देके खुशी होती है ना, इस तरह कर्ज देकर खुशी हो वो कर्ज हसन होगा। इसी तरह कर्दू कहते हैं चुबाने को, अल करीज ज़ात आपकी सहूलत के लिए बोल रही हूँ, वरना अलकरीत चारे का वो गोला जिसे ऊंट अपने पेट में से लौटाकर मुंह में लाता है। आप कहते हैं ना, ऊंट सारा खाना पहले खा लेता है, फिर फारिग होकर बैठता है ना, फिर उसको वापस लाता है मुंह में, फिर उसको चबा के ना वापस लाता है। तो वो खाना जो पेट में जाकर वापस ऊंट अपने मुंह में चबाता है, जुगाली करता है, फिर जब वो हजम होने के काबिल होता है तो मैदे में डालता है ताकि जिस्म में ताकत है, उसको अलकरीज कहते हैं। यहां भी समझिएगा, कर्ज हसन को अगर आप इस एक मिसाल से समझ लेना, तो आपका माल कहीं हजम होने के काबिल हो जाए। हर माल भी याद रखिए कि इंसान के लिए खैर नहीं होता, तो जरूरत है इस बात की कि इस बात को समझा जाए कि ये कैसी चीज है। खैर हो गई बात, मंजल्लज़ी युक्रिदुल्लाहु कर्दन हसना फयुदाइफहु लहू। ये दुआइफा क्या है, बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है, अगर आप थोड़ा सा इंजॉय करने के मूड में हैं तो इसको देख लीजिए। हसन लफ्ज़ आगे जाके थोड़ा सा मजीद कर दूंगी, यहाँ इसको इतना नहीं लेते क्योंकि ये थोड़ा सा आम लफ्ज़ है, आगे भी आएगा। लेकिन युदाइफहु लहू दुगना करता है। देव किसको कहते हैं, देखिए आप लिखिए अपने पास, जोफ के लफ्ज़ में ना जोए पे पेश होगी ना तो कमजोरी होता है, कहते हैं ना दाफ आएंगे आगे लफ्ज़ सूरह आल इमरान में आएगा, व मस्तकान व मा दाफू, नबियों के जो साथी थे उनमें कमजोरी नहीं थी। लेकिन जब दाद की जेर कर दें देव, तो दुगना मल्टीप्लाई, समझिएगा इसको जरा। अदाफू दोफ, दाफ कहते हैं कमजोरी को, जैसे आप कहते हैं ना फुलां की राय बड़ी जईफ है, जईफुर राय है, राय की कमजोरी। जोफ होगा तो बदन की कमजोरी है, कुव्वत के मुकाबले में आता है। इसी तरह फौजी कमजोरी के लिए लफ्ज आता है दाफन, ठीक है। अब यहां लफ्ज दुगना कैसे हो गया, तो समझिएगा इसको कि जब एक चीज दूसरी के साथ मिलती है दुगनी हो जाती है, दो चंद के मानों में बढ़ाना चढ़ाना। अरब लोग मुदाफतुन तिजारत की एक किस्म को कहते थे, सूद दर सूद खाने को कहते थे, बल्कि ये लफ्ज़ सूरत आल इमरान में इंशाल्लाह मुझे बताइएगा तो वहां मैं आपको मजीद समझाने की कोशिश करूं। लहू कसीरन, कसीरा क्या, कसरत किस चीज से होती है, देखिए सिर्फ गिनती का नाम कसरत नहीं है कि 100 नहीं 1000, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी भी। आपके चीजें 10 नहीं है, आपने किसी को 10 दी, उसने आगे आपको 10 दी, बट उसने आला किस्म की 10 दी तो वो भी कसीर होंगी। इस तरह लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबल, ज्यादा देर रहने वाली चीज। तो ये जो कहा ना कि अल्लाह बढ़ाता है, इसमें आप जरा जरा अल्लाह का वादा समझिएगा। दिया आपने अल्लाह के रास्ते में कर्ज हसन, वो तो कम हो गया, बट अल्लाह उसको किसी और रंग में आपकी बाकी चीज में बरकत डाल देगा तो वो ज्यादा हो जाएगा। बात वाज़े, ये जो जईफ का लफ्ज हम बोलते हैं ना, वो भी इसी से, बूढ़ा कमजोर, ठीक है। तो क्या बता दिया कि तुम डरो नहीं, और यक बिजु व या बसुत, ये लफ्ज है ना कब्ज, अल्लाह ताला का नाम भी अल काबित और अल बासित, आगे आप पढ़ेंगे इसी में इंशाल्लाह, कब्जा इसी लेसन के एंड पे आएगा, तो वहां इस लफ्ज को थोड़ा सा खोलती हूँ। क्या पता चला कि अल्लाह ताला की ऊपर नजरें लगाओ, वइलैही तुरजाउन, इसी की तरफ तुमको लौटना है, तो माल को भी उसी तरफ लौटा दो। यहाँ पे एक किस्म से ऐसे लगता है कि एक वाक्या पूरा हो गया। मैं वो हदीस आपको सुनाना चाह रही हूँ जिसका तذکرہ मैंने पीछे कर्ज़े हसना में किया था, ताकि हदीस सही तरह आपके पास आ जाए। हजरत अबू दहदा के बारे में आता है कि जब यह आयत नाजिल हुई तो नबी सल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपसे पूछा कि अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। अंदाज देखिए, फिदा अम्मी व अबी, ये इस तरह कहते थे, इनकी आदत थी। क्या अल्लाह ताला हमसे कर्ज मांगते हैं, और आपसे पूछा अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, क्या अल्लाह हमसे कर्ज मांगते हैं हालांकि वो कर्ज से मुस्तगनी है, यानी अल्लाह को इसकी जरूरत नहीं। तो आपने फरमाया, हाँ अल्लाह ये चाहते हैं कि इसके जरिए से तुमको जन्नत में दाखिल कर दें। और अबू दहदा ने यह सुनकर कहा, अल्लाह के नबी हाथ बढ़ाएं। आपने हाथ बढ़ाया, अबू दहदा ने कहना शुरू किया कि मैं खजूर के दो बागों का मालिक हूं, इसके अलावा मेरी मिल्क में कुछ नहीं, यानी मेरी प्रॉपर्टी में और कुछ नहीं, बस दो बाग हैं, मैं अपने ये दोनों बाग अल्लाह ताला को कर्ज देता हूँ। आपने इनसे फरमाया, एक अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दो, दूसरा अपने अहले याल की मुआशी जरूरत के लिए बाकी रख लो। देखिए ये हमारे दीन का हुसन, बैलेंस, ये ना हो कि आज तुम जकात दे रहे हो तो कल जकात लेने वाले बन जाओ, कहा एक रख लो एक दे दो। अबू दहदा ने कहा, आप गवाह रहिए, इन दोनों में से खराब बेकार नहीं, बेहतरीन बाग जिसमें खजूर के 600 दरख्त हैं, मैं इसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हूँ। यानी अच्छा वाला दे दिया, खराब रख लिया। हम क्या करते? वल्लाह ही अपने दिल पे हाथ रख के हम पूछें खुद से, हमने कहा ना ये दिल से उतर गया दे दो, ये खराब हो गया ये दे दो। भाई खराब करके जो देना है तो नया ही दे दो। जरूर है कि तुम अगले को दुखी दो देने के साथ चीज। तो यही बात कही कि अबू दाहदा ने। इस पर नबी सल्लम इंतहाई मसरूर होकर कहने लगे, कम मिन गस्किन रिदाहन व दारी फियाहन ली अबी दाहदा। फरमाए खजूरों से लबरेज बेशुमार दरख्त और कुशादा महल्लात किस कदर अबू दाहदा के लिए तैयार है। यानी अल्लाह के नबी ने खुशखबरी दे दी कि जन्नत में अबू दाहदा के लिए सब तैयार हो गया। अबू दाहदा घर तशरीफ लाए, क्योंकि आपका घर बाग के अंदर था, इसलिए बाग के किनारे पे खड़े होकर आवाज दी, या उम्मे दाहदा, ऐ दाहदा की माँ। दाहदा कौन था? बेटा था। ऐ दाहदा की माँ, बच्चों को लेकर बाहर आ जाओ, ये बाग अल्लाह को कर्ज दे चुका। बीवी का रिएक्शन क्या होगा? ये किस मौलवी ने आपको लूट लिया, आप तो बातों में आ गए। नहीं, खुश होकर कहने लगी, या ए अबा दाहदा, आपने बहुत अच्छा सौदा किया। ये कपल चाहिए आते ही ये बात लेते ही शिपिंग, फिर दीन का काम होगा।
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون।
आज दीन क्यों नहीं फैल रहा आपको पता है? बहुत बड़ी वजह ये भी है, हमें दीन से भी प्यार है, माल से भी प्यार है, हमारे दिल से कंजूसी जा ही नहीं रही, बुखल जाते ही नहीं है। हमें यकीन है जन्नत का, पर कहते हैं वो तो मरने के बाद है, दुनिया में भी सब कुछ है, दुनिया में भी चाहिए, ये है वो है। तो जितनी बात अभी उसका खुलासा, नंबर एक, जिंदगी की मोहब्बत में घरों में ना बैठे रहो। नंबर दो, मौत के डर से पीछे ना हट जाओ। तीसरी बात, मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में। चौथी बात हमने समझी कि अल्लाह की राह में लड़ो, किसी और मकसद के लिए ना लड़ना। पांचवी बात, सिर्फ अल्लाह के लिए अल्लाह के झंडे तले जमा हो जाओ। और छठी चीज हमने पढ़ी कि तुम्हारी नीयतों को भी अल्लाह जानता और तुम्हारी दुआओं को सुनता है, और तुम्हारा कोई अमल जाया नहीं करेगा, उसके हाथ में सब कुछ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, मा नकसत सदकतुम मिन माल, सदका माल में कमी नहीं करता, और इसका जामिन अल्लाह है, अल्लाह ताला बढ़ाएगा। सही मुस्लिम की एक रिवायत है अबू मसूद अल अंसारी से, एक आदमी एक ऊंटनी लेकर आया जिसको मुहार डाली हुई थी। अर्ज किया, ये अल्लाह ताला के रास्ते में सदका है। तो इसे रसूलुल्लाह ने फरमाया, तेरे पास क्यामत के दिन इसके बदले 700 ऊंटनियां होंगी जिनकी मुहार डाली होगी। अरब लोग मुहार नहीं डालते थे, कम डालते थे। तो आपने कहा सिर्फ ऊंटनियां ही नहीं मिलेंगी, मुहार डाली भी मिलेंगी। अल्लाह अकबर, वइलैहि तुरजऊन।
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون